आज है 2 अगस्त दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। चीन में अदालत ने हाई प्रोफाइल वकीलों और कार्यकर्ताओं को सरकार की छवि खराब करने का दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कंधमाल में ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा में पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने के दिए आदेश।
अब फायदा तो जरूर होगा, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, सेकेंडली जो इकोनॉमिक लॉस हो गया था उसको थोड़ा रिपेयर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में हुए गैंगरेप पर सपा नेता आजम खान ने दिया विवादास्पद बयान।
वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वोट के लिए इतना गिर जाएंगे चुनाव पर।
तो बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर लगे पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। चीन की एक अदालत ने कुछ बड़े वकीलों और कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है। ये लोग एक साल से ज्यादा समय से हिरासत में थे। झाई यानमिन को सरकारी टीवी पर ये स्वीकारते और पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है कि उन्होंने सरकार की छवि बिगाड़ने का काम किया था। उन्हें 3 साल निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई है। झाई की ही कंपनी में काम करने वाली एक अन्य वकील वांग यू को सोमवार को ऐसा ही एक वीडियो दिखाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों के खिलाफ चीन में हुई कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिंता जताई गई थी। पिछले एक साल में करीब 300 वकीलों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकतर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीयों की मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज रवाना हो रहे हैं। भारत ने सऊदी अरब में फंसे कर्मचारियों को वहां से निकालने का वादा किया है और उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। सऊदी में फंसे ये भारतीय लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े थे, जिन्हें कंपनियों के बंद होने के बाद निकाल दिया गया। कुछ कर्मचारियों के बकाया पैसे भी नहीं दिए गए। इन भारतीयों को सऊदी से निकालने का वीज़ा हासिल करने के लिए भी सरकारी मदद की ज़रूरत है। तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कंस्ट्रक्शन उद्योग प्रभावित हुआ है। कुवैत में काम कर रहे भारतीय कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं, हालांकि उनकी हालत उतनी खराब नहीं है। सीरिया के जिस शहर में सोमवार को रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को विद्रोहियों ने मार गिराया था, उसके करीब ही जहरीली गैस गिराने की खबरें आ रही हैं। सीरियाई नागरिक सुरक्षा समूह के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि एक हेलीकॉप्टर ने इदली प्रांत के साराकिब में क्लोरीन गैस गिराई है।
Yesterday at 11:20 p.m. a helicopter dropped 2 baller bombs.
कल रात करीब 11:30 बजे एक हेलीकॉप्टर ने साराकिब में 2 बैरल बम आम नागरिकों के घरों पर गिराया। इनमें क्लोरीन और बॉल बियरिंग भरे थे। हमले में 33 नागरिक जख्मी हुए हैं, जिनमें 18 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी पीड़ितों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये थे सीरियाई नागरिक सुरक्षा समूह के प्रवक्ता के शब्द। बांग्लादेश में हाल ही में हुए बड़े चरमपंथी हमलों से जुड़े 2 लोगों के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने बड़े इनाम की घोषणा की है। ढाका के कैफे में पिछले महीने हुए हमले के सिलसिले में बांग्लादेशी मूल के कनाडाई नागरिक तमीम चौधरी पर हमले की योजना बनाने का आरोप है। इस हमले में 20 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिनमें ज्यादातर विदेशी थे, जिन्हें मार डाला गया। दूसरा संदिग्ध जियाउल हक नाम का एक सैन्य अधिकारी है, जिस पर ईद के दौरान हुए हमले की योजना बनाने का आरोप है। कैफे में हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली थी, हालांकि बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि इसके लिए घरेलू चरमपंथी जिम्मेदार थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। चीन में एक साल से भी ज्यादा समय तक हिरासत में रहे वकीलों और कार्यकर्ताओं के समूह को आज अदालत ने दोषी करार दिया। तियानजिन में एक दिन चली सुनवाई में एक चीनी कार्यकर्ता जाई इन मिन को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सजा सुनाई गई। उन्होंने सरकारी मीडिया में इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने देश के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए उन्हें पछतावा है। इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। क्या है पूरा मामला, सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
चीन में पिछले साल वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक उच्च स्तरीय समूह को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर पैसे देकर सरकार विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप थे। इनमें से एक व्यक्ति जाई यानमिन को सजा सुनाई गई है। जाई यानमिन पिछले 1 साल से हिरासत में थे और उन्हें 3 साल की जेल की सजा दी गई थी। सरकारी मीडिया एजेंसी में दिखाए गए एक वीडियो में ज़ाई यानमिन एक बयान को पढ़ते नजर आ रहे हैं, जिनमें वो उन सभी आरोपों को मान रहे हैं जो उन पर लगाए गए हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे गलत लोगों ने भटकाया, हुश अगैन और ऐसे ही बाकी लोग। मैं कपटी वकीलों और आवेदनकारियों के झांसे में आ गया ताकि परेशानियां पैदा कर सकूं। मैं कई गतिविधियों को चला रहा था, काश मैं इसे बदल सकता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे मालूम है कि मैंने सरकारी प्राधिकरण का दमन कर एक गंभीर अपराध किया है। मैं अपनी गलती मानता हूं और अफसोस जताना चाहता हूं। सजा सुनाए जाने के बाद ज़ाई यानमिन के शब्द। ज़ाई यानमिन की ही लीगल फर्म के तीन और लोग यानी हु शिगेन, ज़ू शिफेंग और ली हैपिंग पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं और तियानजिन में इन पर मुकदमा चल रहा है। पिछले साल ज़ाई यानमिन सहित 300 वकीलों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 20 कार्यकर्ता अब भी हिरासत में हैं। ये कार्रवाई इन वकीलों और कार्यकर्ताओं पर लगाम कसने के लिए की गई थी। इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की आलोचना हो रही है। इसके विपरीत चीन के मुताबिक सुनवाई का तरीका कानूनी और पारदर्शी है। साथ ही चीनी सरकार के अनुसार उनकी ओर से मीडिया एजेंसियों को सुनवाई में आने का न्योता भी दिया गया था। बीबीसी के अनुसार उन्हें ऐसा कोई न्योता नहीं मिला और जब संवाददाता वहां पहुंचे तो वहां मौजूद सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने उनकी तलाशी लेने के बाद उन्हें एक होटल के कमरे में भेज दिया जहाँ केस का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था।
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चीन में हाई प्रोफाइल वकीलों और कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया गया। ये थे वैभव श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कंधमाल जिले में ईसाइयों के खिलाफ साल 2008 में हुई हिंसा के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। ईसाई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दंगों में जिनके जानमाल का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजे के नाम पर बहुत मामूली सहायता ही मिली थी। इस हिंसा में 38 लोगों की जाने गई थी जबकि 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। दिल्ली से सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जो मुआवजा ओडिशा के कंधमाल में हुई हिंसा के पीड़ितों को दिया गया है वो संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2008 में 23 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार साथियों की हत्या के बाद कंधमाल और उसके आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 38 लोग मारे गए थे। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या चाकापाड़ा स्थित उनके आश्रम में हुई थी। बाद में माओवादियों ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ईसाई मिशनरियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ओडिशा में चर्च के प्रवक्ता फादर दिवाकर परिचा ने कहा,
क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन मिला वो बहुत कम था, तो इसीलिए हम लोग बहुत बार भी प्लीड किया अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, वो तो कॉम्पेंसेशन बारे में कोई हिट भी नहीं दिए, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आर्चिबिशप तिनाथ फाइल किए वो रीट पिटीशन। हाँ, फायदा तो जरूर होगा, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, सेकेंडली जो इकोनॉमिक लॉस हो गया था उसको थोड़ा रिपेयर हो जाएगा। इवन द कॉम्पेंसेशन जो अवार्ड किया सुप्रीम कोर्ट तरफ से, फिर भी वो कॉम्पेंसेशन इट कैनॉट बी कॉम्पेंसेटेड इक्वली, बट स्टिल वॉट एवर मे बी, बट वी रेस्पेक्ट टू द कोर्ट।
ईसाई समुदाय का कहना है कि कंधमाल में हुई हिंसा में चर्चों पर हमले हुए और इलाके से 25,000 से ज्यादा ईसाइयों का पलायन हुआ था। बीबीसी से बात करते हुए कंधमाल के ईसाई समुदाय के बीच काम करने वाले कार्यकर्ता फादर अजय कुमार सिंह का कहना था कि 2008 की हिंसा में 6,000 से ज्यादा ईसाई प्रभावित हुए थे जबकि मुआवजा सिर्फ 4,000 पीड़ितों को ही मिल पाया।
4,200 करीब लोगों को ही एक्सेप्ट किया है, तो और जो बाकी 2,000 प्लस उन लोग रह गए हैं, उन लोग कुछ खो दिए है अपना सामान वगैरह सब कुछ खो दिए, लेकिन उन लोगों को अपना लिस्ट में भी नहीं लिए, और जो पार्शियल डैमेज और कंप्लीट डैमेज उन लोग जो एन्यूमरेट किए हैं लिस्ट किए हैं उसमें भी बहुत लोगों को छोड़ दिए हैं, इसलिए हमारा भी ये एक तो पीआईएल में एक तो प्ली है कि उन लोगों को मदद मिलते, उन लोगों को एक बार ठीक से उन लोगों को एन्यूमरेट करना चाहिए और ठीक से उन लोगों जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो कंपनसेशन देना चाहिए।
इसके अलावा कंधमाल में हुई हिंसा के सिलसिले में ईसाई संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में हिंसा करने के आरोपियों को सजा दिलाने का मामला भी उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा हिंसा के कुछ अभियुक्तों के खिलाफ कमजोर मामला दायर किया गया जिससे वो बरी हो गए। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की घटना और उसके बाद भी हुई कई घटनाओं पर जहां राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री आजम खान ने इसे सियासी साजिश बताकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के बयान की निंदा करते हुए बुलंदशहर की घटना की सीबीआई जाँच की मांग की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे लोगों और अपराधियों के बीच साठगांठ है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
बुलंदशहर में चार दिन पहले हुई गैंगरेप की घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस अभी भी हाथ पैर मार रही है। जिले के बड़े पुलिस अधिकारी घटना के दो दिन बाद ही हटा दिए गए। मुख्यमंत्री खुद लगातार नजर रखे हुए हैं। बावजूद इसके राज्य भर से कम इसी तरह की 2-3 वारदातें और हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी घटना बुलंदशहर के पास शिकोहाबाद में भी घटी है। जाहिर है सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही, लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री आजम खान इसके पीछे राजनीतिक साजिश देख रहे हैं।
वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। वोट के लिए इतना गिर जाएंगे ये शायद बापू ने नहीं सोचा होगा, वरना शायद बापू की विचारधारा ही अलग होती। चुनाव परिवर्तन और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।
भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के इस बयान की निंदा की है और बुलंदशहर की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी नेता श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
आपके सबसे नजदीकी करीबी मंत्री जो दंगा करने के लिए जाने जाते हैं, जो प्रदेश में जहर घोलने के लिए जाने जाते हैं, जो वोट की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए जाने जाते हैं, आज तो हद हो गई कि इस जो गैंगरेप हुआ है इसका भी वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं वो साजिश देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मांग करते हैं अखिलेश यादव जी, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको शर्म आती है, तो इस पूरी जो घटना हुई है इसकी जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए।
इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने बीजेपी नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में नोएडा पहुंचा। केशव मौर्य ने भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के बाद घटना की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं बुलंदशहर की घटना के बाद हरकत में आए पुलिस के आला अधिकारियों ने जब अपने ही मातहतों को चेक करना शुरू किया तो राजधानी लखनऊ समेत राज्य भर में ज्यादातर पुलिसकर्मी रात में सोते नजर आए। इन घटनाओं के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी नेता मायावती का कहना है कि अधिकारियों और अपराधियों दोनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जो सपा सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है, यदि क्राइम को कंट्रोल करना है तो अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि जो आपराधिक तत्व है विशेष अभियान चला के उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। वो खुलेआम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्राइम कैसे रुकेगा।
इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अगस्त को बुलंदशहर की घटना में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले हैं, जबकि पीड़ित परिवार के मुखिया ने मीडिया के जरिए धमकी दी है कि यदि 3 महीने के भीतर दोषियों को सजा नहीं दी गई तो उनके सामने परिवार समेत आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे। मौर्य के साथ कई कार्यकर्ता भी थे और पीड़िता के घर के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया उन्होंने। इसके बाद मीडिया संस्थानों के केशव प्रसाद मौर्य के पीड़ित के घर के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए तस्वीरें भी प्रकाशित किए जाने के बाद अब पीड़ित की पहचान सार्वजनिक होने का सवाल उठ रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ितों से मिले। मौर्य के साथ कई कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने पीड़िता के घर के बाहर पत्रकारों को संबोधित भी किया। मीडिया संस्थानों ने केशव प्रसाद मौर्य के पीड़ित के घर के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। मौर्य के इस तरह मीडिया की मौजूदगी में पीड़ित परिवार से मिलने से पीड़ित की पहचान सार्वजनिक होने का सवाल भी उठ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह कहती हैं,
कानून में अगर आप कोई भी चीज दिखाते हो जिससे रेप विक्टिम की आइडेंटिटी दुनिया को पता चल जाएगी, वो कानून गैर कानूनी है। तो अगर आप उसका मकान दिखाओगे तो जरूर उसकी आइडेंटिटी तो आसपास वाले समझ जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज, गली का नाम, स्कूल का नाम, गली का नाम हो या स्कूल का नाम हो, ऐसी कोई भी चीज हो जो आप डिस्क्लोज करते हो जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, वो आप नहीं कर सकते।
हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि उन्होंने पहचान सार्वजनिक नहीं की है। मौर्य कहते हैं,
नहीं, हम परिवार को जो मिले हैं बंद कमरे मिले, बाहर मीडिया के लोग इकट्ठा थे, कैसे सोचा थे, उनको जो बात करना है वो करेंगे। आप कहीं से प्रभावित होकर के अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो अलग बात। दर्दनाक और इतनी शर्मनाक घटना है और इस आजम खां जैसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति की इतनी गंदी टिप्पणी है और श्री अखिलेश यादव सरकार की इतनी मतलब घोर विफलता है, उसके बाद आपको जो इतनी बड़ी समस्या है प्रदेश के अंदर वो नहीं दिखाई।
जब उनसे पूछा गया कि वो कहीं और बिना मीडिया की मौजूदगी के भी तो परिवार से मिल सकते थे, तो उन्होंने कहा,
मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ, आप इसको डिसाइड नहीं करेंगे मैं कहाँ मिल सकता हूँ। जहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का परिवार है और उस मंडल अध्यक्ष के परिवार से मैं संकट में मिलने नहीं जाऊँगा। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, सरकार के विफलता के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, न्याय दिलवाने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा और जो परिवार है उसके हर सुख दुख के साथ भाजपा खड़ी रहेगी।
गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक के एस मैनुअल से हमने पूछा कि क्या मौर्य ने परिवार से मिलने की अनुमति ली थी और क्या पुलिस ने परिवार की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां बरती थीं, तो उन्होंने कहा,
ठीक है, हम जानकारी ये कर लेते हैं कि क्या इस तरीके का वायलेशन हुआ है या नहीं। मैं पूरी क्वेरी कर लेता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ मौके से कि हुआ क्या है। मेरा वर्जन केवल ये है कि मैं पहले जानकारी कर लूँ कि क्या घटित हुआ है।
हाल ही में दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पत्रकारों के लिए बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप में बलात्कार पीड़ित का नाम भेजने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की एक सदस्य के बलात्कार पीड़ित के साथ सेल्फी खींचने पर भी विवाद हुआ है। मौर्य की पीड़ित से मीडिया की मौजूदगी में मुलाकात से भी पीड़ित की पहचान सार्वजनिक होने का सवाल उठ रहा है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी।
महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच राजनीतिक पारा काफी बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार में बीजेपी का सहयोग दे रही शिवसेना ने अलग विदर्भ राज्य बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर चुकी है। उधर इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की पत्नी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं मुंबई से अश्विन अघोर।
महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 दिनों से काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे को लेकर भाजपा की सहयोगी दल शिवसेना समेत विपक्ष भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अलग विदर्भ राज्य बनाने का आश्वासन दिया था, तो वहीं शिवसेना ने इसका कड़ा विरोध किया था। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में यह मुद्दा शुक्रवार को उठ रहा है। मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने किए हंगामे के चलते सदन दिनभर के लिए स्थगित किया गया। मंगलवार दोपहर इस मुद्दे पर शिवसेना काफी आक्रामक हो गई और आनन फानन में कांग्रेस के साथ एक बैठक कर ली, जिसमें यह तय किया गया कि बुधवार को सदन में अखंड महाराष्ट्र का प्रस्ताव रखा जाएगा। जहां एक ओर शिवसेना और कांग्रेस अलग विदर्भ राज्य के विरोध में एक साथ खड़ी है, वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। संजय निरुपम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के परिवार के महाराष्ट्र के गृह निर्माण राज्य मंत्री और शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर से कारोबारी रिश्ते हैं, जिनकी वजह से रविंद्र वायकर को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद बचाया जा रहा है। निरुपम ने कहा कि विजयलक्ष्मी इंट्राकॉन नामक कंपनी में रविंद्र वायकर, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के मामा दिलीप श्रृंगारपुरे निदेशक है। विजयलक्ष्मी ग्रुप मुंबई में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का एक प्रोजेक्ट कर रही है, जो जोगेश्वरी गुफा के पास पुरातत्व विभाग के आदेशों के उल्लंघन में बन रहा है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने बीबीसी को बताया,
तो ये कारोबारी संबंध की वजह से एक मंत्री को तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार करने की छूट मिल रही है और उसको क्लीन चिट मिल रही है, और इस आधार पर आज वो सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी मैंने लोगों के समक्ष रखी है कि कैसे श्री रविंद्र वायकर की पत्नी श्रीमती मनीषा रविंद्र वायकर और श्री उद्धव ठाकरे की पत्नी श्रीमती रश्मि उद्धव ठाकरे जी दोनों मिलकर के ये कारोबार कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। और जमीन थोड़ी बहुत हो तो बात समझ में आती है, सैकड़ों एकड़ में जमीन निकल के आ रही है धीरे धीरे।
ये थे जय निरुपम। रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ने रायगढ़ जिले में 25 एकड़ जमीन खरीदी है जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मनीषा वायकर और रश्मि ठाकरे ने मिलकर कोंकण में अलग अलग जगहों पर करीब 900 करोड़ रुपए की 8.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। रविंद्र वायकर ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि उनके कारोबार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जो भी जमीन खरीदी गई है वह आयकर विभाग तथा चुनाव आयोग के संज्ञान में है। बीबीसी से बातचीत में वायकर ने कहा,
जो मैंने इलेक्शन के इसमें दिखाया हूँ ये पुरलाई में मेरे मिसेज के नाम से और बाबी के नाम से हमने जगह ली है, जब डिक्लेयर ही किया वो चीज जो पता थी क्यों है, ऐसा कुछ मालूम नहीं लोगों को, तो है तो है ना कौन बोल रहा है, चोरी है कि जगह खरीदना या न खरीदना, या संजय निरुपम कोई पूछ के खरीदना मांगता है, तो इसके लिए मैंने कहा है कि ये जगह की कीमत 900 करोड़ या 125 करोड़ होती है तो दलाल में देने को तैयार हो, बेच के मेरे को तुरंत दे दो।
ये थे रविंद्र वायकर। उन्होंने ये भी कहा है कि वे संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे।
कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने लगाए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप। ये थे मुंबई से अश्विन अघोर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज व मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
दिन भर आप सुन रहे हैं सुशीला सिंह के साथ। भारत के अलग अलग हिस्सों की तरह बिहार में भी दलित उत्पीड़न की कुछ घटनाएं बीते कुछ दिनों में सामने आई हैं। चाहे वह दलित मनरेगा मजदूरों की पिटाई का मामला हो या फिर बाइक चोरी मामले में दलित का उत्पीड़न, इन चर्चित घटनाओं से इतर नीतीश सरकार ने अपनी नई पारी में ऐसे कुछ फैसले दिए जिससे दलित समुदाय का एक हिस्सा सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। विपक्ष भी इन्हें मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला करती रहती है। कौन से हैं ये मुद्दे और क्या कहना है इस पर पक्ष विपक्ष का, सुनिए पटना से मनीष चांडले की ये रिपोर्ट।
जुलाई में दलितों को पेशाब पिलाए जाने, दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, दलित महिलाओं के साथ मारपीट जैसी कुछ कथित घटनाएं बिहार में सामने आई हैं। बिहार पुलिस के बीते 5 साल के आंकड़े भी यह बताते हैं कि इस दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। इस बीच बिहार सरकार ने 20 जुलाई को 82 विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की सूची जारी की। पटना हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों के संचालन के लिए ये नियुक्तियां हुई हैं। इस सूची में किसी भी दलित को जगह नहीं मिली है। राजेंद्र नट SC/ST अधिवक्ता जनकल्याण समिति के प्रधान महासचिव हैं। राजेंद्र के मुताबिक सामाजिक न्याय कायम करने का दावा करने वाली नीतीश सरकार ने दलितों के साथ अन्याय किया है।
कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा गठबंधन की सरकार हो, सदियों से माने दलितों का प्रतिनिधि होते आया था, माने वकील सरकारी, ये माने जो दलित वकीलों हैं आक्रोश में है कि ऐसा क्यों किया, दलित का वोट नहीं दिया है क्या है, हमारे कब माने दलितों सैकड़ों वकील यहाँ अधिवक्ता है, इसके पहले 4 अफसर विधि पदाधिकारी थे उसको भी हटा दिया।
वकीलों की तरह दलित छात्र भी बिहार सरकार से नाराज चल रहे हैं। यह नाराजगी जून में बिहार सरकार के वजीफे संबंधी नीति में बदलाव के कारण सामने आ रही है। सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए SC/ST वर्ग के छात्रों को मिलने वाले वजीफे को घटाकर अधिकतम 15,000 कर दिया है। पटना के महेंद्रू स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले अजय कुमार और राम बाबू कुमार अपनी चिंता और नाराजगी इन शब्दों में बयान करते हैं।
इस तरह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर उच्च शिक्षण संस्थान में नहीं जा पाएंगे।
किसी भी लोग का शौक रहता है, कोई भी बोलते कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मगर सरकार उस पर दलित, कम से कम दलित पे इस चीज़ को उन्होंने रोक लगा दिया है, और जो जहाँ से नीचे थे उसी जगह पे फिर दलित लोग को फिर नीचे गिराने का काम कर रही है सरकार।
इन मुद्दों के सामने आने के पहले मई जून में जब राज्यसभा की 5 और विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तब भी सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा किसी दलित को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इन सब के साथ बिहार में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी बिहार सरकार विपक्ष और कर्मचारी संगठनों के निशाने पर रहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं।
आज डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और आईटीआई वगैरह और आईआईटी में हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं उनको स्टाइपेंड हम लोग देते रहे थे 1 लाख से 1.25 लाख तक, नीतीश कुमार जी आते आते उसको 15,000 कर दिए हैं। तो इसके चलते भी हमारी स्थिति बद से बदतर हो रही है। और फैक्ट ये है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में आरक्षण है, वैसी परिस्थिति में शेड्यूल कास्ट या गरीबों का वोट लेकर के आने वाले हमारे गठबंधन के सरकार के लोग शायद शेड्यूल कास्ट के मामला को बढ़िया से नहीं करना चाहते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं खोट है।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इन आरोपों से इनकार करते हैं कि नई सरकार दलितों की उपेक्षा कर रही है।
पूर्णति आरक्षण ये तो राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में मामला लंबित है, नागराज के केस में मामला लंबित है। भारत सरकार को चाहिए कि जब वो और भी बिलों को पास कराने में वो अपनी प्रतिष्ठा लगाती है तो इस बिल को पास कराने में क्यों नहीं प्रतिष्ठा लगाती है। जहाँ तक लीगल जो आपने कहा कि लीगल अफसर जो बहाल हुए, तो अभी 82 लोग हुए हैं और लोग भी होने हैं, उसमें भी होंगे शेड्यूल कास्ट पहले भी हुए हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे।
सत्तारूढ़ दल के तर्क और उनकी सफाई अपनी जगह है, लेकिन दलित समाज पर करीबी नज़र रखने वालों का मानना है कि आरक्षण, वजीफा संबंधी इन फैसलों और कुछ मामलों में राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं मिलने से दलित निराश हैं। कुछ हद तक वे ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। दलित चिंतक और पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रमाशंकर आर्य इस उपेक्षा की वजह बताते हुए कहते हैं,
जितनी पार्टियाँ हैं लगभग दलित समाज से वैसे ही लोगों को दलित समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनती हैं जो उनके फॉलोअर्स हों, उनका झोला ढोने वाले हों या उनके यस मैन की तरह हों, जो बहुत दलितों के अधिकार को लेकर के जो सजग हैं, जिनको एक समझ है और जो बहुत प्रबुद्ध हैं, वैसे दलित राजनीतिक विचारकों को प्रायः सभी दलित राजनीतिक पार्टियाँ किनारे रखती हैं।
आर्य के मुताबिक ऐसे में दलितों को पूरा राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा है और ऐसा लंबे समय से चल रहा है। हालांकि इसके खिलाफ दलित सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। छात्रवृत्ति के सवाल पर इंडियन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जहां कल विधानसभा मार्च आयोजित किया है, तो वहीं अधिवक्ता जनकल्याण समिति भी राजभवन मार्च की योजना बना रहा है। मनीष सांडिल, BBC पटना।
बिहार में नीतीश सरकार से नाराज दलित समुदाय, ये थे मनीष शांडिल्य। और अब समय खेल की खबरों का, रजत चान्ना हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है। रजत
जी, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं जिसमें भारत का पलड़ा काफी भारी है। वेस्टइंडीज को भारत के 304 रनों की बढ़त का पीछा करना और अपनी दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इससे पहले तीसरे दिन के खत्म होने तक रहाणे ने शानदार शतक जड़ा और 108 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे दिन के खेल के खत्म होने से पहले उमेश यादव के विकेट गिरते ही लगातार बारिश के कारण मैच में बाधा पड़ गई थी और भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर घोषित कर दी थी। टीम इंडिया की पहली पारी के आधार पर 304 रन की बढ़त उन्हें मिली थी। वहीं बैस्टन में कल से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में यदि पाकिस्तान को वापसी करनी है तो उनके बल्लेबाजों को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच 330 रन से जीता और श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने लॉर्ड में पहला टेस्ट मैच 75 रन से जीता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उनकी सलामी बल्लेबाज की जोड़ी को लेकर है और देखना होगा कि क्या इस बार पाकिस्तान बल्लेबाजी को लेकर कुछ बदलाव करेगी। उधर शॉटपुट में एथलीट इंद्रजीत सिंह ने बी नमूने का टेस्ट भी प्रतिबंधित पदार्थ का पॉजिटिव पाया गया है जिसके कारण उनकी रियो ओलंपिक में जाने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। 28 वर्षीय इंद्रजीत का ए नमूना 25 जून को प्रतिबंधित स्टेरॉयड एंडोस्टेन का पॉजिटिव पाया गया था और सूत्रों ने बताया कि अब उनका बी नमूना भी जांच के किसी पदार्थ का पॉजिटिव पाया गया है।
खेल समाचारों के लिए रजत चान्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार चीन की एक अदालत ने कुछ बड़े वकीलों और कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीय वर्करों की मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज रवाना हो रहे हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुए बड़े चरमपंथी हमलों से जुड़े दो लोगों के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने बड़े इनाम की घोषणा की है। भारत और नेपाल में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर लोग बाढ़ और भूस्खलन की वजह से मारे गए हैं। पिछले हफ्ते नॉर्मंडी के चर्च में इस्लामिक स्टेट के हमले में मारे बुजुर्ग फ्रांसीसी पादरी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फादर जैक हामेल को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कैथेड्रल पहुंचे हुए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे इकबाल अहमद। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।